તારીખ 27/10/1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 394 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 335
સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 394 પૃષ્ઠ સંખ્યા 217 દ્રવ્ય વિદ્યમાન હૈ ફિર ભી દિખાઈ ક્યોં નહીં દેતા દ્રવ્ય માને દ્રવ્ય સ્વભાવ યહાં દ્રવ્ય માને દ્રવ્ય સ્વભાવ द्रव्य का विषय दो प्रकार से है द्रव्य शब्द का वाच्य दो प्रकार से है एक द्रव्य स्वभाव और एक प्रमाण का विषयभूत द्रव्य यानी वस्तु तो हम आत्मा है हम जीव है ऐसा तो सर्व सामान्य रूप से लोक में भी प्रसिद्ध है क्योंकि अगर किसी का आयुष पूरा होता है तो वो क्या बोलते हैं कि आत्मा चला गया जीव चला गया तो ऐसा कोई पदार्थ है जो चला जाता है जो आता है वो तो सबको मालूम है परंतु उसका जो मूल स्वभाव है और उससे अनादि से
संसारी जीव
अनजाना है
अनभिज्ञ है तो यहाँ प्रश्न द्रव्य स्वभाव का है द्रव्य माने द्रव्य स्वभाव 394 नंबर का प्रश्न है पृष्ठ संख्या 217 है विद्यमान तो है द्रव्य मैंने द्रव्य स्वभाव विद्यमान तो है फिर दिखाई क्यों नहीं देता तो जो द्रव्य स्वभाव है वो शक्ति के रूप में है सामर्थ्य के रूप में है पावर के रूप में है जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती क्योंकि वो पावर के रूप में है मीटर में वोल्टेज से इसका नाप आता है परंतु वो किसी को दिखाई नहीं देती इसका प्रवाह वायर में जाता है केबल में जाता है दिखाई नहीं देता लेकिन इसका प्रयोग जहां जहां होता है मालूम पड़ता है
ये ट्यूबलाइट जलती है पंखा चलता है इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी मालूम पड़ती है उसका ज्ञान होता है पावर जो पावर के रूप में शक्ति के रूप में जो तत्व होता है जो सत्व होता है उसका ज्ञान होता है वो कोई देखने की चीज नहीं होती प्रश्न किया है कि दिखाई क्यों नहीं देता है दिखाई इसलिए नहीं देता है कि वो पावर के रूप में है लेकिन इसका ज्ञान करना चाहे तो ज्ञान हो सकता है व्यक्त पर्याय से अव्यक्त का अव्यक्त शक्ति का अव्यक्त सामर्थ्य का ज्ञान हो सकता है इस तरह से ज्ञान करना चाहिए द्रव्य स्वभाव का द्रव्य स्वभाव मैंने अपना मूल स्वरूप उसका ज्ञान करना
जरूरी है
आवश्यक है
सभी प्रकार के दुख मिटाने के लिए
तो बेंसर समाधान देते हैं कि द्रव्य तो सदा व्यक्त ही है
अव्यक्त नहीं कहा
पदार्थ पर्याय की अपेक्षा अव्यक्त है, लेकिन स्वरूप की अपेक्षा से व्यक्त है। शास्त्र में दो ही कथन है, आगम की अपेक्षा में अव्यक्त कहेंगे क्योंकि पर्याय को व्यक्त कहते हैं, समय सार के 49 गाथा में अव्यक्त के 6 बोल हैं। वहां पर्याय को व्यक्त कहा है, परद्रव्य को व्यक्त कहा है, रागादि को व्यक्त कहा है, स्वरूप को अव्यक्त कहा है। सापेक्ष बात है, अपेक्षित बात है, फिर व्यक्त कैसे हैं? कि जो जीव अंतर्मुख होता है, स्वरूप सन्मुख होता है, उनको स्पष्ट ज्ञान में आता है। कैसा आता है? एकदम स्पष्ट आता है। अगर वो व्यक्त नहीं होता तो ज्ञान में आता कैसे? उसका ज्ञान होता कैसे? तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका व्यक्तपना भी है। अनुभव प्रत्यक्ष है, स्वरूप प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्षता है जी। स्वरूप प्रत्यक्ष का 12वीं गाथा में, 11-12 की गाथा में जो है वो प्रत्यक्ष लिया है। प्रत्यक्ष है, व्यक्त है। किसके लिए व्यक्त है? कि जो अंतर्मुख होता है इसके लिए वो व्यक्त है, जो बहिर्मुख होता है उनको व्यक्त रूप से नहीं जानने में आने से वो कहते हैं कि व्यक्त नहीं है। और दूसरे पर्याय आदि के प्रगटपणा के अपेक्षा से आगम में भी अव्यक्त है, ऐसा व्याख्यान आ सकता है। अध्यात्म में तो आगम की बातें एक और रखो, अध्यात्म में तो अव्यक्त है क्योंकि अध्यात्म में स्वरूप सन्मुखता है, स्वरूप का अवलंबन है, वही स्वरूप का आधार है, जो अव्यक्त है उसका ही आधार है। तो वहां तो स्पष्ट जानने में आता है, इसलिए व्यक्त है। द्रव्य तो सदा व्यक्त ही है, ऐसा उत्तर दिया है। सदा ही व्यक्त है अपने स्वरूप से, अंतर्मुख होकर देखे तो ऐसा मालूम पड़े बिना रहे नहीं कि द्रव्य तो सदा व्यक्त ही है, परंतु स्वयं ऊपर दृष्टि नहीं डालता, अंतर्मुख होकर के अपने पर नजर नहीं जाती, ज्ञान नहीं जाता, इसलिए दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता इसलिए व्यक्त नहीं है, विद्यमान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव श्री एक दृष्टांत देते थे कि जैसे हमारे यहाँ कोई जीवनवार होता है, जिमने का 100-200 आदमी जिमने का होता है, तो एक बड़ा टोपिया में रसोई बनाई जाती है, बहुत बड़ा टोपिया होता है, 100-200 आदमी की रसोई होती है। तो अब क्या होता है, कभी पहले तो, अभी तो गैस हो गया, पहले तो चूल्हे पर ही रसोई बनाई जाती थी, लकड़ी जलाई जाती थी, कभी कभी कोई गीली लकड़ी हो या बरसात के सीजन में पानी गिरा हो, ऐसी लकड़ी अंदर चूल्हे में आती है तो अच्छी तरह जलती नहीं है, बहुत धुआं हो जाता है, इतना धुआं होता है, इतना धुआं होता है कि इतना बड़ा बर्तन दिखता नहीं, बहुत बड़ा टोपियां होने पर भी दिखता नहीं। दिखता नहीं है इसलिए है नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्या हमारी पीठ हमको दिखती है? तो नहीं है क्या? हमारे दादा परदादा हमको दिखते नहीं,
तो क्या वे नहीं थे क्या? इसलिए
हम दिखे तो माने, नहीं दिखे तो नहीं माने,
ऐसा आग्रह,
ऐसा पूर्वग्रह,
ऐसा दुराग्रह
नहीं होना चाहिए।
जो बात
न्याय से,
युक्ति से,
अनुमान से
और अनुभव से
सिद्ध होती है,
उसको उसका स्वीकार कर लेना चाहिए।
अनादि से पर की ओर दृष्टि है,
इसलिए
और सब दिखाई देता है किंतु स्वयं अपने को नहीं देखता। जीव के अनादि से पर की ओर दृष्टि है, स्वलक्ष्य किया नहीं कभी,
पर लक्ष्य बहुत हो गया है।
कितना हो गया है?
बहुत हो गया है।
क्यों?
पर रुचि ज्यादा है इसलिए। तो
पर रुचि से
पर लक्ष्य बनता है,
और पर रुचि और पर लक्ष्य के होने से स्वलक्ष्य बन नहीं सकता। स्वलक्ष्य नहीं होने से
स्वयं का सामर्थ्य दिखाई नहीं देता।
लेकिन
सामर्थ्य दिखने की बहुत सी बातें ज्ञानियों ने बताई हैं,
आचार्यों ने बताई है।
देखिए,
परिभ्रमण करने वाला जीव अनंत काल
निगुद में रहता है, पर्याय का काल तो कम है।
कितना दुख है वहां?
बहुत दुख है, बहुत दुख है।
अनंत काल अनंत दुख भोगते हुए भी इसके सुख स्वभाव के सामर्थ्य को देखो तो उतने के उतने अनंत सुख से भरा हुआ है सामर्थ्य।
तो कितने सामर्थ्य हुआ? अनंत सामर्थ्य हुआ कि नहीं हुआ?
इतना दुख सहन करना
फिर भी खत्म नहीं होना, ये अस्तित्व का अनंत सामर्थ्य है।
इतना दुख सहन करके भी, अनंत काल तक अनंत दुख सहन करके भी नाश नहीं हुआ, अभाव नहीं हुआ, अस्तित्व नहीं मिटा,
ये अनंत अस्तित्व का सामर्थ्य दिखाता दिखता है।
और फिर भी अनंत सुख स्वभाव
अंदर में वैसा का वैसा है,
ये सूचित करता है कि
इसका सामर्थ्य हर गुण में,
प्रत्येक गुण में अनंत है। एक गुण में अनंत सामर्थ्य है तो प्रत्येक गुण में भी
अनंत सामर्थ्य है,
और गुण का सामर्थ्य कभी
अधूरा नहीं होता। जैसे एक चिंगारी
सारे विश्व को जला सकती है
अगर आग लग गई तो, ऐसे
अल्प ज्ञान में भी,
ज्ञान अल्प होते हुए भी अपने
आत्मकल्याण का प्रयोजन की
दृष्टि लग गई
और लगन लग गई
तो सिद्ध पद प्राप्त हो सकता है, निर्वाण पद की प्राप्ति हो सकती है। जैसे चिंगारी से आग लग सकती है, ऐसे लगने से निर्वाण पद मिल सकता है।
लगन चाहिए, इसके बिना काम होने वाला नहीं है।
लगन क्यों नहीं लगती जीव को? दुखी होना तो चाहता है लेकिन लगन क्यों नहीं लगती?
कहीं और जगह लगन लगी हुई है,
विपरीत प्रकार की लगन तो लगी हुई है।
सुखी होना चाहता है लेकिन कहीं और जगह से सुख लेना चाहता है, और उसकी गलत फहमी है। गलत फहमी होने से उल्टा चलता है,
भ्रांति से।
इसलिए सही बात भी
हमारे सौभाग्य से हमारे सामने आई है। ऐसी सही बात
विश्व के सभी मनुष्यों को नहीं मिलती। इस
पृथ्वी के गोले पे
595 करोड़ मनुष्य है। कितने हैं? 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं है,
करीब 6 अरब की आबादी है।
उसमें से ये बात मुट्ठी भर लोगों को ही सामने आई है।
प्रचार प्रसार में हम लोग कमजोर हैं, कमजोर रहे हैं, इसलिए इसका प्रचार प्रसार उतना नहीं है।
बहुत कम लोगों के सामने वो बात आती है। इसका भी, इस मौके का भी लाभ उठाने वाले बहुत कम लोग हैं।
ये करुणता है इस विषय की, ये काल की बलियारी है कि बहुत कम लोगों को ये बात सुनने में मिलती है, पढ़ने में मिलती है,
फिर भी कुछ एक जीव
इसका यथार्थ प्रकार से लाभ ले सकते हैं,
क्योंकि इसमें लगन चाहिए। जिसको मालूम नहीं है उनको तो लगन लगने का कोई मौका नहीं है।
मौका का मतलब क्या है? अल्प समय, आयु अल्प है ना, इस काल में अल्प है और अनिश्चित है, तो इसलिए इसको मौका कहते हैं। गुजराती में तक कहते हैं, तक मैंने अल्प समय।
उस अल्प समय में अगर किसी को लगन लग जाती है तो उसका काम हो जाता है, लगन नहीं लगती है तो काम नहीं होता।
अब ये प्रश्न आपका हो सकता है कि जिसको सुनने को नहीं मिली इसकी बात तो छोड़ो, जिसको सुनने के मिली इसमें कुछ एक जीव को ही लगन लगती है, दूसरों को नहीं लगती है, इसका क्या कारण?
ये प्रश्न आपका हो सकता है कि ये बात सुनने वाले में भी,
संसार में, संसार वृत्ति में फंसे हुए लोग आते हैं। कौन आते हैं? संसार में, संसार वृत्ति में, मोह में फंसे हुए लोग आते हैं,
और मोह का मिटना आसान नहीं है। मोह का मिटना आसान नहीं है,
तो मोह में जो फंसे हैं वो वहां से जो निकलते नहीं वो लोग रह जाते हैं, और जो मोह में फंसे फिर भी निकलना चाहते हैं, इसमें दो प्रकार के जीव हैं। कुछ लोग मोह से निकलना नहीं चाहते हैं, कुछ चाहते हैं। जो नहीं चाहते हैं ऐसे लोग बहुभाग है, तो उनका तो निकलना नहीं होगा। अब जो चाहते हैं उसमें भी दो प्रकार है। एक ऊपर ऊपर से चाहने वाले होते हैं, मतलब राग से चाहने वाले होते हैं, और कोई अंदर से मैंने आत्मा में से चाहने वाले होते हैं। राग कमजोर है, राग में कोई ताकत नहीं, और राग मलिन भी है, चोखा नहीं है, शुद्ध नहीं है पर्याय, इसलिए राग से काम नहीं होता। आत्मा में से आवाज आनी चाहिए, आत्मा में से दृढ़ता आनी चाहिए, आत्मा में से लगन होनी चाहिए कि बस मेरे को कुछ और करना ही नहीं, मेरे को मेरा आत्म कल्याण ही करना है। फिर भी कुछ बात करनी पड़े वो अलग होगी बात, लेकिन करने का अभिप्राय नहीं है, करना पड़े प्रारब्ध के कारण से अलग बात होगी, करना नहीं है, एक ही काम करना है। ऐसा जिनका ध्येय बदल जाता है उनका काम हो जाता है, पर वो संख्या मर्यादित होती है, बहुत अल्प होती है। अपने को संख्या से मतलब नहीं है, अपने को अपने से मतलब है। हमको इस संसार दुख से उठ जाना है कि नहीं है, या हमको संसार में भी जो अनादि भ्रांति से सुख लगा है वो भ्रांति में रहना है, या उस भ्रांति को छोड़ करके हमें हमारा आत्म कल्याण कर लेना है कि नहीं है। अगर करना है तो शक्ति बहुत है अंदर में, और करना है तो बाहर में भी कुदरती सुविधा मिली जाती है, ये कुदरत की व्यवस्था है। फिर चाहिए अंतर से बात उठनी चाहिए, अंतर से भावना होनी चाहिए, अंतर से लगन लगनी चाहिए। द्रव्य विद्यमान है तथापि अनादिकालीन भ्रांति के कारण उसे नहीं दिखता। जैसे धुआं में तोपिया नहीं देखा, वैसे राग का धुआं में ज्ञान स्वरूपी चैतन्य प्रकाश की मूर्ति नहीं दिखती। जैसे घने बादल के कारण से तेज पुंज सूर्य नहीं दिखता, हाँ सूर्य तो तेज का पुंज है, लेकिन घने बादल के कारण से सूर्य भी नहीं दिखाई देता, पता है कि नहीं होता है। शक्ति किसकी ज्यादा, सूर्य के प्रकाश की और बादल की? कि शक्ति तो अपने अपने में अपनी है, जितनी है उतनी है, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं उस पर आधार है। अगर हम बादल के ऊपर जाएं तो हमको सूर्य दिखाई देगा, हवाई जहाज से जाते हैं ना, हवाई जहाज क्या करता है कि बादलों के ऊपर चलता है, खास करके बरसात की सीजन में बादल आकाश में ज्यादा होते हैं, तो जो हवाई जहाज है वो बादलों के ऊपर चलता है, तो उनको कोई प्रकाश की या बादलों की कोई आपत्ति नहीं, कोई अड़चन नहीं। ऐसे हम राग से ऊपर जाकर के देखें, हम कहाँ खड़े हैं, राग के अंदर में खड़े हैं, राग के नीचे खड़े हैं तो नहीं दिखाई देगा। हमको राग तो छोड़ना नहीं और आत्मा को जानना है, चैतन्य सूर्य को देखना है, लेकिन राग राग को तो हमें छोड़ना नहीं, राग के नीचे रहना है और तेज पुंज को देखना है, वो दो बात बनने वाली नहीं है। द्रव्य विद्यमान है तथापि अनादिकालीन भ्रांति के कारण उसे नहीं दिखता। नहीं दिखने का कारण भ्रांति है, भ्रांति होते ही वहां राग घनिष्ठ होता है, जहां भ्रांति होती है वहां राग घनिष्ठ होता है। अब भ्रांति का क्या स्वरूप है, ये प्रश्न यहां हो सकता है कि भ्रांति का क्या स्वरूप है। कि भ्रांति का वो स्वरूप है कि हम ज्ञान स्वरूपी चैतन्य मूर्ति आत्मा होने के बावजूद भी हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम फलाने हैं, हम फलाने हैं, इस घर के हैं, इस परिवार के हैं, इस देश के हैं, इस नात के हैं, इस जात के हैं, बहुत प्रकार की भ्रांति को लेकर के बैठ गए हैं, और हमारी आत्मा एकत्व स्वरूप है, अकेला ही है, क्योंकि जन्म पाया भी अकेला, सुख दुख भोगते हैं तो भी अकेले भोगते हैं, और मरेंगे तो अकेले, स्वर्ग में जाएंगे तो अकेले, निर्वाण पद को पाएंगे तो भी अकेले। अकेले होने पर भी हम अकेले रह नहीं सकते, हमको सबके साथ रहना है। और जिसके साथ रहते हैं वो हमारे हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारे पति पत्नी हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा घर है, हमारी इज्जत है, हमारे समाज है, हमारा देश है। यहाँ से लेकर के गांव छोड़ना पसंद नहीं करते हम। हमारा गांव हम कैसे छोड़े, हमारा गांव कैसे छोड़े, सब जान पहचान वाले तुम्हारे रहते हैं। कोई जबरदस्त कारण बने बिना कोई अपना गांव छोड़ता नहीं। या तो रोटी नहीं मिले, राज रोजगार नहीं मिले, परिस्थिति कोई खराब हो जाए, या बहुत बड़ा मुनाफा होने का हो तो बहुत बड़ा लाभ वाले तो दो जगह रखते हैं, गांव छोड़, गांव में भी अपना मकान रखते हैं और जहां लाभ होता है वहां भी रख लेते हैं। ये क्या सूचित करता है कि हम अकेले होने के बावजूद भी अपनापन बहुत जगह करते हैं, जबकि शरीर भी हमारा नहीं है, दूसरी चीज तो हमारी नहीं है, लेकिन जो शरीर का योग कहते हैं, जुड़ा हुआ है आत्मा के साथ, योग मैंने जुड़ा हुआ, वो भी जब हमारा नहीं है, इसका एक परमाणु भी हमारा नहीं है, फिर भी हम उतना प्रगाढ़ ममत्व अपनत्व कर लेते हैं, तो हमको हमारा स्वरूप कहां से दिखाई देगा? जो अकेला है वो अकेला कहां से दिखाई देगा? इस तरह से हमारी भ्रांतियां भी बहुत है, और भ्रांति होने के कारण से हमारे राग द्वेष मोह भी बहुत है, और यही कारण से हमको हमारा परमात्म पद का दर्शन नहीं होता। वो परमात्म पद का दर्शन को ही आत्मज्ञान कहते हैं, उसी को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, उसी को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं, और यही निर्वाण पद का कारण है। द्रव्य विद्यमान है तथापि अनादिकालीन भ्रांति के कारण नहीं दिखता, स्वयं ही है, द्रव्य है, वो कोई दूसरी चीज नहीं है, स्वयं ही तो है, तब स्वयं अपने से छुपा कैसे रहे, नहीं दिखता, ऐसा तुम्हारा प्रश्न है। ज्ञानी कहते हैं कि हमारा प्रश्न है कि स्वयं है तो छिपा कैसे रह सकता है कि नहीं रह सकता, इसका सामर्थ्य दिखने का संसार में भी सबूत है कि देखो अनंत काल निगोद में रहा, एक श्वासोश्वास में 18 वक्त जन्म मरण किए, फिर भी नाश नहीं हुआ, अनंत मृत्यु हुई, अनंत दुख हुआ, अनंत आघात प्रत्याघात बहुत हुआ, अस्तित्व का नाश नहीं हुआ, मौजूदगी मिटी नहीं, विद्यमानता गई नहीं, तो अस्तित्व स्वभाव बेहद हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? और दुखी भी बहुत हुआ निगोद में, फिर भी अनंत सुख भरा है सामर्थ्य में। ज्ञान इतना संकुचित हो गया, सिकुड़ गया कि निगोद में एकेंद्रीपना अक्षर के अनंत में भाग में ज्ञान रह गया, फिर भी केवल ज्ञान का सामर्थ्य नहीं गया, अनंत ज्ञान का सामर्थ्य नहीं गया। तो ये सबूत है हमारा कि अनंत सामर्थ्य हमारे में है। इस सामर्थ्य को जो संभालता है उसी को भ्रांति और सभी प्रकार के राग द्वेष आदि विभाव सहज मात्र में जाता है। इसका एक दृष्टांत ले लें कि किसी एक मनुष्य को दारू पीने की, शराब पीने की आदत हो गई। उतनी आदत है कि छोड़ नहीं सकता। इनको कोई उपदेश देते हैं कि भाई ये अच्छा तो नहीं है, पागलपन आता है और पागलपन आने से कई प्रकार के नुकसान भी कर लेते हैं अपने आप को, और व्यवसाय आदि में इतना समय नहीं दे सकते, शक्ति नहीं खर्च कर सकते, आर्थिक नुकसान भी होता है, तबीयत भी बिगड़ती है, हेल्थ को भी नुकसान करता है, कैंसर भी होता है, फिर भी वो छोड़ नहीं सकता। क्या जैन माने क्या है? तीर्थंकर के परिवार में आए हुए जीव है। कौन है? हमारे दादे परदादे कौन थे? तो तीर्थंकर लोग थे। इतने महान इनके दादे परदादे होते हैं, इनके परिवार में, इनके खानदान में क्या शराब पिया जाता है क्या? हाँ, अगर उनको इसका गर्व आता है ना, छुपना आसान है। बहुत समझाने पर, बहुत उपदेश देने पर, बहुत नुकसान बताने पर वो जो नहीं छूटता है, एक खानदानी के अहम भाव से छूटना सहज है। वैसे हम कितना भी उपदेश सुने कि क्रोध नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, और हमको कितना भी नुकसान बताया जाए कि अगर हम नहीं मानेंगे तो नरक निगोद में जाएंगे, इतना दुख सहन करना पड़ेगा, चिरी गति में इतना दुख है, फलाने वो है वो है वो है, छह डाले में बहुत आता है, जीव को असर नहीं पहुंचते। किंतु अगर उनको अपना स्वभाव सामर्थ्य संभालने का हो, अरे मेरा अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत अस्तित्व, अनंत विभुत्व, अनंत प्रभुत्व, क्या क्या चीज भरी है, कितना कैसा मेरा सामर्थ्य है, मैं तो तीन लोक का नाथ हूं भीतर में, बस ये आधार और अवलंबन आता है, जैसे खानदानी का आधार आया, सहज मात्र में विभाव जा सकता है, भ्रांति सहज मात्र में छूट सकती है। इसलिए अन्य दर्शनों में ये स्वभाव की बात नहीं है, बाकी सब कुछ उपदेश है। उपदेश बहुत होने पर भी वहां निर्वाण नहीं मिलता, इसका कारण वो है कि संसारी जीव को भ्रांति और विभाव की प्रगाढ़ता भी कम नहीं है, अनादि से वो संस्कार लेकर के परिणमन हो रहा है और बहुत गाढ़ है, बहुत गाढ़ है। तो प्रयोग करे तो मालूम पड़े कि कितनी गाढ़ता छा गई है शरीर से एकत्व, साता आती है तो मालूम पड़ जाता है परिणाम कैसे चलते हैं, पीड़ा होती है, मुझे पीड़ा हुई, यही आता है समझ में। मालूम पड़ा है कि ये तो असाता विदनी पुद्गल की पर्याय है, जीव की नहीं, फिर भी अनुभव जीव में कर लेते हैं। अवलोकन करे तो मालूम पड़ता है कि कितना गाढ़ संस्कार है एकत्व का, उसको मंद किए बिना अभाव होता नहीं। तो यहां प्रश्न उठाया है, दिखता नहीं ये तुम्हारा प्रश्न है, हम कहते हैं कि स्वयं का स्वरूप छिपा कैसे रह सकता है, तुम्हारा दिखने का सही प्रयास नहीं है,
अगर देखने का सही प्रयास होता है तो दिखाई बिना रहता नहीं। स्वयं अपने से छुपा नहीं है, स्वयं अपने से छुपा नहीं है, वह स्वयं है, साक्षात है। साक्षात माने प्रत्यक्ष, स अक्ष माने प्रत्यक्ष, स्वयं है, प्रत्यक्ष है, नायक स्वयं है, अन्य कोई नहीं है, जानने वाला स्वयं ही है, अन्य कोई नहीं है। जयचंद जी छावड़ा ने समय सार के 246 कलश की भावार्थ में लिखा है, आत्मा कहाँ से पहचाना जाता है। ज्ञान लक्षण से आत्मा पहचाना जाता है, यही एकमात्र पहचानने का मुद्दा है, लक्षण है। और क्यों पहचाना जाता है ज्ञान लक्षण से, इसकी चर्चा की है कि ज्ञान साकार है, ज्ञान प्रगट है और ज्ञान अनुभव गोचर है। जो अनुभव में प्रगट रूप से, साकार रूप से अनुभव गोचर होता है, तो अनुभव के कारण अनुभवांश से वो पहचाना जाता है। इसलिए चर्चा तो उस मुद्दे पर कर रहे हैं कि इसीलिए तो सारे समय सार में आचार्यों ने आत्मा को ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र कहकर के राग से भिन्न दिखाया है। यही कारण है पहचानने का, कि लक्षण से अगर तुमको लक्ष्य हो गया तो सम्यक्तवादी निर्वाण पद तक की सभी अवस्थाएं इस लक्ष्य के कारण से उत्पन्न हुआ पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ अधीन है। सभी पर्याय लक्ष्य के कारण से उत्पन्न हुए पुरुषार्थ के अधीन है, वरना पुरुषार्थ की दिशा उल्टी रहती है, लक्ष्य होने से सुलटी होती है, तो कार्य संपन्न हो जाता है। तो स्वयं ही जानने वाला है, स्वयं है, साक्षात है और अनुभव में आबाल गोपाल सभी को सदा ही अंतरंग में अनुभव में आ ही रहा है। लक्ष्य नहीं होने के कारण या पर के साथ एक पड़ा का लक्ष्य और निश्चय होने के कारण भ्रांति का धुआं इतना उठता है कि धुआं के आड़े तोपिया नहीं दिखता, लेकिन है तो सही। नहीं दिखता इसलिए नहीं है, तो बात नहीं है। यह तो उस जैसी बात है कि स्वयं अपने को नहीं दिखता, कोई कहे कि मैं अपने को नहीं दिखता, परंतु जो ज्ञाता है वह स्वयं ही है, ये सब कौन देख रहा है। जो जो कार्य होता है, जो सब विकल्प आते हैं, उन्हें कौन जानता है, कौन जानता है, सबको कौन जानता है, भावों को कौन जानता है। जो जानने वाला है वो आत्मा है, ज्ञान स्वभावी आत्मा है, वो जानने वाला है वही आत्मा है। हम सर्दी गर्मी का अनुभव करते हैं, हम कड़वा मीठा का अनुभव करते हैं, लेकिन वो तो सब पुद्गल है। कड़वा मीठा भी पुद्गल है, सर्दी गर्मी भी पुद्गल है, लेकिन अनुभव करने वाले का अनुभव नहीं करते। बस
यही हमारी मूल में बड़ी भूल है कि अनुभव करने वाले का अनुभव नहीं करते, कि जो अनुभव करने वाले हैं उसमें अनुभव क्या चीज है। अनुभव दो शब्द का जुड़ा हुआ एक शब्द है, अनु वत्ता भव, भव मैंने होना, भू भव टू बी, होना अनुसरण करके होना। किसको अनुसरण करके होना, कि स्वरूप को अनुसरण करके होना, अपने आप को अनुसरण करके होना, उसी को नाम कहते हैं स्वानुभव। ये स्वानुभव होने से किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं रहती, छूट जाती है। स्वयं का अनुभव करना है, अनुभव तो कर ही रहा है, जो बाकी है वो स्वयं का अनुभव करने का है। हमारे स्वाध्याय में आने वाले तो लोग ऐसा कहेंगे कि स्वानुभव तो करना ही है किंतु हो नहीं पा रहा है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहेंगे कि हम तो बहुत कोशिश करते हैं, शास्त्र की पढ़ाई भी बहुत किया, तत्व ज्ञान का अभ्यास भी बहुत किया, और एकांत में बैठ करके ध्यान लगाने का और स्वरूप का अनुभव करने का प्रयास भी बहुत किया, फिर भी अनुभव नहीं हो रहा है। ये हमारी तकलीफ है, विटमना है, कठिनाई है, क्या करें। ये बात आती है, आएगी आखिर में, तो वो बात आएगी कि इतना इतना करने के बावजूद भी अनुभव नहीं हो रहा है, क्या करें। ये सब कुछ किया लेकिन अनुभव तक पहुंचने की पहली वाली जो प्रक्रिया है वो बिना समझे किया। हर काम की कोई पद्धति होती है, प्रत्येक काम की कोई न कोई पद्धति होती ही है। रोटी रोटी की पद्धति से बनती है, हलवा हलवा की पद्धति से बनती है, दाल चावल अपनी पद्धति से बनता है। कहते हैं रसोई पकाने की बात, फिर भी उसमें सब चीज की अलग अलग पद्धति है। ये सर्वसाधारण सामान्य बात होने के बावजूद भी उस पद्धति छोड़ करके अगर हम काम करें तो बनता नहीं, बनता है क्या, नहीं बनेगा। गुरुदेव दृष्टांत देते थे कि हलवा तो तीन चीज मिलाने से हो ही जाता है, आटा शक्कर और गेहूं, आटा शक्कर और घी, तीन मिलाने से हो जाता है। तीन मिलाने से होता है क्या, नहीं होता है। अगर तीन को मिला दिया और चूल्हे पे चढ़ा दिया तो तीनों बिगड़ेगा, कहते थे कि नहीं कहते थे, उसकी भी एक पद्धति है। तो अनादि का संसार को उथला करके उसका नाश करके निर्वाण पद को पाना, इतना एक अपूर्व और सर्वोत्कृष्ट और सबसे बड़ा काम करने की कोई पद्धति होती है, वो पद्धति क्या है उस पर हमारा ध्यान नहीं गया। तो हम हमारी मनमानी करने लगे। जिसको धन बल था वो दान देने लगे, जिसको शरीर बल था वो उपवास आदि तपस्या करने लगे, जिसको मन बल माने बुद्धि बल था वो शास्त्र की पढ़ाई करने लगे, तीनों बल था वो तीनों करने लगे, लेकिन अपनी मनमानी, ऐसा नहीं चलता। जो लोग इस कार्य में सफल हुए वो लोग कैसे सफल हुए, उनकी कार्य पद्धति क्या थी, वो बात समझने की बहुत बहुत आवश्यकता है। जैसे क्रमभंग उपदेश भी सफल नहीं होता, वैसे क्रमभंग कार्य पद्धति भी कभी सफल नहीं होती। वो क्रम क्या है वो बात हम समझते नहीं, समझने की दरकार भी नहीं होती, तो सफलता आएगी कहां से। एक कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। हाँ, अवक्रम होना चाहिए। कल परसों हम शाम को लेते हैं, श्रीमद् जी के वचनामृत पढ़ते हैं, तो उसमें एक चिट्ठी आया था, आया था कि ज्ञान दिशा सहज है, कृत्रिम नहीं है, सहज है और सुगम भी है, लेकिन ज्ञान दशा पाने के पहले जो दशा आनी चाहिए ना, ये बहुत बहुत कठिन है। क्यों? कि अगर सही मुमुक्षुता आई तो ज्ञान दशा सह जाएगी, तो अनंत काल किसमें गया कि सही मुमुक्षु दशा नहीं आने में गया। तो हम ज्ञान दशा के शास्त्र पढ़ लेते हैं, ज्ञानी को ऐसा होता है, ज्ञानी को वैसा होता है, मुनियों को ऐसा होता है, ये सब बात समझ लेते हैं। मुमुक्षुकता के विषय में जो इस गहराई में हमें जाना चाहिए वो बात हमारे ध्यान पर आई नहीं। हमारा ध्येय तो निर्वाण पद का है, इसलिए सम्यक दर्शन चाहिए। निर्वाण पद होने के लिए क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। लेकिन हमारी सबसे निकटतम दशा कौन सी है कि जो जो हमको होनी चाहिए वो हमारी यथार्थ मुमुक्षुता की दशा है। ये हमारी निकट अवस्था है, उसका हमको सीधा डायरेक्ट वर्तमान में प्रयोजन है। निर्वाण पद और सम्यक दर्शन तो परंपरा प्रयोजन का विषय है, निकट प्रयोजन का विषय नहीं है। क्योंकि इसकी समीप वाली दशा नहीं आई तो सम्यक दर्शन आएगा कहां से और निर्वाण पद होगा कहां से। उस प्रयोजन को हम समझते नहीं, प्रयोजन को पकड़ते नहीं, और जो परंपरा प्रयोजन हो उसको पाने के लिए हम मनमानी कर लेते हैं। कर्म विपर्यास, कर्म विपर्यास ये सबसे बड़ा विपर्यास है। जो सम्यक ज्ञान के तीन विपर्यास है उसमें ये एक विपर्यास है, जो मिथ्या ज्ञान को छोड़ने नहीं देता। स्वरूप विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता और कारण कार्य विपरीतता, ये क्रम विपरीतता कारण कार्य विपरीतता वाला विपरीतता है कि कौन सी पर्याय कारण होती है तब कौन सी पर्याय कार्य होती है, किस पर्याय का कारण बनता है। पूर्व में तो उत्तर पर्याय कार्य हो जाता है, संपन्न होता है, वो कारण कार्य विपरीतता या क्रम विपरीतता रह जाने से स्वरूप के विषय में और भेदाभेद के विषय में जानकारी किया हुआ निष्फल जाता है, सफल नहीं हो पाता है, यही कारण है इसका। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शास्त्र स्वाध्याय पढ़ करके जानकारी कर लेना ये तो बहुत आसान बात है, लेकिन क्रम प्रवेश करके अपना काम निपटाना, उस विषय पर अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों का ध्यान नहीं गया, ऐसा प्रत्यक्ष दिखने में आता है। शास्त्र पढ़ने वाले बहुभाग तो बुद्धिमान लोग ही होते हैं, ये तो सूक्ष्म वाले का ही काम है, फिर भी प्रयोजन की सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टि होना ये तो इस बात का सही मूल्यांकन हुए बिना नहीं होता। सही मूल्यांकन होना चाहिए इस बात का, तभी इसकी दरकार इतनी आएगी, तभी इसकी गरज इतनी आएगी, तभी इसकी भावना इतनी आएगी, तब लगन लगेगी। लगन लगाई नहीं लगती, लगन लगाई नहीं लगती, वो सहज है, प्रारंभ भी सहज है और उसका अंत भी सहज ही है और बीच वाली दशा भी सहज ही है और वस्तु का मूल स्वभाव भी सहज है। आत्मा सहज स्वरूपी आत्मा है, आत्मा सहजात्म स्वरूप है। कैसा है? सहजात्म स्वरूप आत्मा है। तो उसके पाने का उपाय है वो प्रारंभ से लेकर के सहज ही है। वो सहज कैसे हो गए, यही हमें करना है। भूतकाल में, वर्तमान में तथा भविष्य में जो प्रसंग बने हैं, बनते हैं और बनेंगे, उनका अपने अंतरंग में स्मरण रहता है, स्मृति बनी रहती है, तो स्वयं का अस्तित्व है ऐसा निश्चित होता है। अस्तित्व ग्रहण करना है ना श्रद्धा में, तो अस्तित्व की बात लेते हैं कि देखो हमारा अस्तित्व बहुत है, अनंत है, अपार है, असीम है, इसका ये सबूत है। अनेक दृष्टांत से इसका सबूत मिलता है अस्तित्व का। तो कौन जानते हैं या सब विकल्प आते हैं उन्हें कौन जानता है, सब यह सब कौन देख रहा है, जो जो कार्य होते हैं जो सब विकल्प आते हैं वो कौन जानता है। यहाँ तक पढ़े थे ना, तीन सौ चौरानवे तो चल रहा है अभी। चल गया है, बराबर चला, छोटा नहीं। यह तो जैसी बात है कि स्वयं अपने को नहीं देखता, कोई कहे कि मैं अपने को नहीं देखता, परंतु ज्ञाता तो है, स्वयं ही है। फिर प्रश्न उठाए हैं, ये सब प्रश्न चले, ये सब कौन देख रहा है, जो कार्य होते हैं जो सब विकल्प होते हैं उसे कौन जानता है, वहां तक चला था। और उसका और सबूत देते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान के प्रसंग ज्ञान में आता है, ये किसके अस्तित्व में आता है, स्वयं का अस्तित्व, जिसमें स्मृति बनी रहती है वो स्वयं का अस्तित्व है, ऐसा निश्चित होता है। मैं कौन हूं कि मैं तो शाश्वत टिकने वाला आत्मा हूं, बाहर का सब पलट जाता है और मैं स्वयं तो शाश्वत रहता हूं, स्वयं शाश्वत रहता हूं, कोई मेरा स्वरूप है, जो पलट जाता है वो मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि मैं शाश्वत रहने वाला हूं। इस पर से अपना अनंत अस्तित्व का विश्वास आता है, प्रतीति आता है कि मैं हूं। अब मैं कैसा हूं वो ज्ञान से पता चलता है कि मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं। दो बात होनी चाहिए, मैं हूं और मैं कैसा हूं। जैसा हूं वैसा शाश्वत हूं, ऐसी प्रतीति आना वही सम्यक दर्शन है और उसका अनुभव वही सम्यक ज्ञान है। इस तरह से यहां पर दिखाई नहीं देता है तो कहां से देखना, वो बात लिया है, थोड़ा विस्तार से लेने योग्य है कि कहाँ से देखना अपने को, दिखाई नहीं देता है तो कैसे देखना, किस रीति से देखना, किस विधि से देखना, ये थोड़ा विशेष विस्तार करने योग्य विषय है। इसी मुद्दे को लेकर के कल के स्वाध्याय में लेंगे, इस बात को समय हुआ है।
Rasta kare